प्रिय श्रोताओं नमस्कार। बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सब भी हमारे साथ आज का बाइबल अध्ययन करने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से यशाया नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और इसका मुख्य विषय है मसीह का आगमन और छुटकारा। प्रिय श्रोताओं, हमें विश्वास है कि इस बाइबल अध्ययन के द्वारा आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। लीजिए, प्रस्तुत है ये बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सीखने और सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, विशेष करके अपने उन सभी मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम इन दिनों बाइबल में से यशाया नबी की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम यशाया के द्वारा उन भविष्यवाणियों को देख रहे हैं जिसे उसने इसराइलियों के लिए किया और हमारे जीवन के लिए भी आज यह लाभकारी है। तो इससे पहले कि आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम आपके जीवित और सच्चे वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें ताकि आज जो कुछ भी हम सुनते हैं, सीखते हैं, अपने जीवन में हम ग्रहण कर सकें और उसके अनुसार से चलने पाएं। हर एक प्रकार की बुराइयों से, व्यर्थ की बातों से, बुरी संगति से और शैतान के हर एक छल प्रपंच की बातों से आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों की रक्षा करें। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है जो बीमार हैं, निराश हैं, चिंतित और परेशान हैं या किसी प्रकार के दबाव में हैं, आर्थिक दबाव, पारिवारिक दबाव, व्यक्तिगत उलझन, आप प्रत्येक के साथ हो, उनकी सहायता करें। फिर से एक बार हम सबको आपके हाथ में सौंप देते हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, जैसा कि मैंने कहा कि हम इन दिनों यशाया नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं, तो आइए आप मेरे साथ यशाया की पुस्तक उसके 6 अध्याय और उसके 7 पद को निकाल लें। यशाया 6 उसके 7 पद में इस प्रकार से लिखा है, उसने उससे मेरे मुंह को छू कर कहा, देख इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। मेरे मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने देखा था कि यशाया मंदिर पर गया और वहां पर एक सराप हाथ में अंगारा लिए हुए चिमटे से वेदी को उठा लिया और उससे उसने उसके मुंह को छुआ। यशाया अशुद्ध होठ वाला मनुष्य था और शोधन की शर्त है। पहला योना की पत्री 1 अध्याय उसके 9 पद में हम पढ़ते हैं, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। मेरे विचार में यदि हम कहें कि यह अंगार प्रभु यीशु मसीह है तो अधिक सही होगा। वही बहुत ऊंचे पर विराजमान है, वही क्रूस पर ऊंचा उठाया गया था। यह अति आवश्यक है कि वह ऊंचे पर उठाया जाए क्योंकि वह इस पृथ्वी पर आया और हमारे साथ एक हुआ, जिससे कि वह जगत के पाप को उठाकर ले जाने वाला मेमना बने। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 29 पद में हम इसे पाते हैं। यशाया के होंठ अब शुद्ध किए जा चुके हैं। मेरे विचार में उसके होठों पर अंगार लगाना उसके भीतरी परिवर्तन का बाहरी चिन्ह है। मनुष्य के मन से उठने वाले विचार उसके होठों से उच्चारित होते हैं। होठों का शोधन मन के शोधन को प्रकट करता है। मेरे मित्रों, नए नियम में एक मनुष्य था जो नाश हुआ था। पौलुस, उसकी पुकार थी, रोमियो की पत्री 7 अध्याय उसके 24 पद में लिखा है, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। इस समय पौलुस एक पापी नहीं, परमेश्वर का भक्त जन था। परमेश्वर उसे सिखा रहा था कि वह परमेश्वर के लिए अपनी शक्ति में जीने योग्य नहीं था, उसे पवित्र आत्मा की आवश्यकता थी। परमेश्वर के लिए जीना केवल परमेश्वर के अनुग्रह से ही संभव है। मनुष्य का काम है कि वह अपने पाप का और परमेश्वर को प्रसन्न करने की अपनी अयोग्यता का अंगीकार करे। यही कारण है कि हमें प्रभु यीशु के उद्धार को जीवन में अपनाने की आवश्यकता है। एक ही बार नहीं, परंतु बार बार अपने आप को उसके पास लाना है। यशाया 6 अध्याय उसके 8 पद में हम पढ़ते हैं, तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा। तब मैंने कहा, मैं यहां हूं, मुझे भेज। मेरे मित्रों, यह बड़ी रोचक बात है कि यशाया ने अभी तक परमेश्वर की बुलाहट को नहीं सुना है। मेरे विचार में अधिकांश विश्वासियों ने परमेश्वर के लिए कुछ करने की बुलाहट को नहीं सुना है, क्योंकि उनका शोधन नहीं हुआ है, अर्थात उद्धार का आनंद उन्हें प्राप्त नहीं है। उन्हें विश्वासी होने की इस महान आवश्यकता का बोध नहीं हुआ है। परमेश्वर अपवित्र पात्र को काम में नहीं लेता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इसमें शक नहीं कि पापियों द्वारा वचन का प्रचार करने पर भी परमेश्वर अपने वचन को आशीष देता है, परंतु उनको वह समय आने पर कठोर दंड भी देगा। मैं ऐसे कुछ प्रचारकों को जानता हूं जो परमेश्वर के वचन के प्रसारण के कारण आशीष पाने के बाद पाप में गिरे और परमेश्वर से कठोर दंड पाया। यशाया ने परमेश्वर की बुलाहट को सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा। यहां एक वचन और बहुवचन दोनों का प्रयोग है, जिससे स्पष्ट होता है कि यह त्रिएक परमेश्वर है। यशाया तुरंत प्रतिक्रिया दिखाता है कि मैं यहां हूं, मुझे भेज। मेरे मित्रों, यशाया ने पहली बार परमेश्वर की बुलाहट को सुना और उसका सकारात्मक उत्तर दिया, जैसा कि एक शुद्ध किया हुआ मनुष्य करेगा। आज कलीसिया में काम करने वाले तो बहुत हैं, परंतु उन्हें पहले शोधन की आवश्यकता है। उनके होठों पर अंगार के स्पर्श की आवश्यकता है। उन्हें अपने जीवन में उपस्थित पाप का अंगीकार करना होगा, जिसके बिना उसकी सेवा निष्फल एवं निराशाजनक होगी। आइए हम देखेंगे अब यशाया का भेजा जाना। यशाया 6 अध्याय उसके 9 पद में लिखा है, उसने कहा, जा और इन लोगों से कह, सुनते ही रहो परंतु न समझो, देखते ही रहो परंतु न बूझो। यशाया को जो संदेश सुनाने के लिए दिया गया था वह अति ही विचित्र है। इन लोगों से अर्थ है इसराइल को। यशाया 6 उसके 10 पद में लिखा है, तू इन लोगों के मन को मोटा और उनके कानों को भारी कर और उनकी आंखों को बंद कर, ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से बूझें और मन फिराएं और चंगे हो जाएं। ध्यान दीजिए कि पहली बार में तो ऐसा प्रतीत होता है यशाया को जिनके पास भेजा गया था वे अंधे, बहरे और कठोर हृदय के मनुष्य थे, परंतु मैं कह सकता हूं कि परमेश्वर कोमल हृदयों को कठोर नहीं बनाता है। परमेश्वर केवल सतह को कठोर बना देता है, हृदय को नहीं। वह देखने की इच्छा रखने वालों की आंखों को अंधा नहीं बनाता और परमेश्वर के हस्तक्षेप के बिना वे नहीं देख सकते। यह कहना कि परमेश्वर अंधा बना देता है या मन को कठोर कर देता है मूर्खपूर्ण निंदा की बात है। मेरे प्रियो, यशाया का उत्तरदायित्व था कि वह इसराइल को ज्योति का संदेश सुनाए। ज्योति में केवल मनुष्यों के अंधेपन को प्रकट करती है अंधकार में तो मनुष्य को अपने अंधेपन का बोध नहीं होता है, जैसा कि हम मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसके 14 और 15 पद में पढ़ते हैं, जहां पर प्रभु यीशु कहता है, उनके विषय में यशाया की यह भविष्यवाणी पूरी होती है, तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें न सूझेगा, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली है, कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखे और कानों से सुने और मन से समझे और फिर जाएं और मैं उन्हें चंगा करूं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं जो मेरे एक मित्र ने मुझे बताया है। वो अपने बचपन में संध्या के समय एक जर्सी गाय का दूध निकालता था और उसको निकालना पड़ता था। उसने अपने साथ में लालटेन लिया और गौशाले में पहुंचने पर दो बातें होती थी, चूहों में छिपने के लिए भगदड़ मच जाती थी और वहां जिन चिड़ियों ने घोंसला बनाया हुआ था वे फड़फड़ा कर ची ची करने लगती थी। ज्योति के कारण चूहे तो छिपने के लिए भागते थे परंतु चिड़िये गाना गाने लगती थी। अब क्या ज्योति के कारण चूहे चूहे बने? नहीं, वे तो पहले से ही चूहे थे। प्रभु यीशु इस जगत में आया तो वह जगत की ज्योति था। उसकी उपस्थिति में दो बातें हुई, उसने चिड़ियों को गाना गाने पर वाध्य किया और चूहों को भागने पर। मैं इसी संदर्भ में एक और कहानी सुनाता हूं। एक बार कोयले की खदान में विस्फोट के कारण अनेक कर्मी दब गए। अनेक दिनों के प्रयास के पश्चात राहत कर्मियों ने उन तक पहुंचने में सफलता पाई। उन्होंने पहला काम जो किया वह था भीतर प्रकाश पहुंचाना। वहां प्रकाश आते ही एक कर्मी बोला, कोई बत्ती क्यों नहीं जलाता है? उसकी बात सुनकर उसके साथी आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगे तो उन्हें पता चला कि धमाके के कारण वह अंधा हो गया था। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि उसे अंधेपन का बोध करवाने के लिए प्रकाश की आवश्यकता थी। परमेश्वर न तो किसी को अंधा करता है और न ही किसी का मन कठोर करता है। ज्योति मनुष्य की वास्तविकता को प्रकट करती है। यशाया के कहने का अर्थ यही था। यही कारण था कि प्रभु यीशु ने इस गद्यांश का संदर्भ दिया था। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 2 अध्याय उसके 14 से 16 पद में पौलुस कहता है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। कुछ के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध है और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध है। भला इन बातों के योग्य कौन है? मैं मसीह का निमंत्रण देते समय सदा ही कहता हूं, यदि आपने मसीह को अस्वीकार किया है, यदि आप आज आराधना में एक पथ भ्रष्ट पापी रूप में आए हैं और पापी जीवन जी रहे हैं, तो मैं आपका मित्र नहीं, क्योंकि आप परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं कह सकते हैं कि आपने सुसमाचार नहीं सुना। देखा आपने, सुसमाचार की ज्योति ने प्रकट किया है कि वे अंधे थे और मसीह का परित्याग किए हुए थे। उसने उन्हें अंधा नहीं किया, उसने तो केवल उनके अंधेपन को प्रकट किया, उनको बोध दिलाया। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। हम सदैव विजयी होंगे। कुछ प्रचारक उद्धार पाने वालों को गिनकर गर्व करते हैं, परंतु मैं सुसमाचार सुनने वाले करोड़ों पर गर्व करता हूं। मेरा काम बीज बोना है, वचन को लोगों तक पहुंचाना है, श्रोताओं के मन को छूना पवित्र आत्मा का काम है। मेरे प्रियो, हम आगे देखते हैं कि यशाया को परमेश्वर ने शुद्ध करके नियुक्त किया कि उसकी प्रजा को उसका संदेश सुनाए। यहां पर अध्याय 6 समाप्त होता है। और अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और अध्याय 7 से अपने अध्ययन को जारी रखेंगे। इसका विषय है इम्मानुएल के कुंवारी से जन्म और यहूदा पर अश्शूरों का आक्रमण। पहले दो पद में यहूदा और इसराइल के मध्य गृह युद्ध का उल्लेख है। सीरिया इसराइल के साथ था। इसे हम पद 3-9 में देखते हैं। धोबियों के खेत की सड़क से ऊपर वाले पोखरे की नाली के सिरे पर यशाया अपने पुत्र शार्याशूब के साथ राजा आहाब से भेंट करने को जाता है और उसे परमेश्वर का प्रोत्साहन का शब्द सुनाता है। पद 10-16 आहाज के इनकार करने पर दाऊद के घराने से कुंवार द्वारा मसीह के जन्म की भविष्यवाणी। पद 17-25 में अश्शूरों द्वारा आक्रमण, परमेश्वर का दंड। हम इन बातों को अध्याय 7 में देखेंगे। तो आइए हम यशाया 7 अध्याय उसके 1 पद को पढ़ें। यहूदा का राजा आहाज, जो योताम का पुत्र और उज्जियाह का पोता था, उसके दिनों में आराम के राजा रसीन और इसराइल के राजा रमल्याह के पुत्र पेकह ने यरूशलेम से लड़ने के लिए चढ़ाई की, परंतु युद्ध करके उनसे कुछ बन ना पड़ा। मेरे मित्रों, हम दूसरे राजाओं की पुस्तक 16 अध्याय उसके 2 पद में भी देखते हैं, जब आहाज राज्य करने लगा तब वह 20 वर्ष का था और 16 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसने अपने मूल पुरुष दाऊद का सा काम नहीं किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में ठीक था। अध्याय 7 की भविष्यवाणी अध्याय 6 में यशाया की बुलाहट और नियुक्ति के बात की है, जब राजा उज्जियाह मर चुका था। दूसरा राजा 15 अध्याय उसके 32-34 पद में लिखा है, रमल्याह के पुत्र इसराइल के राजा पेकह के दूसरे वर्ष में यहूदा के राजा उज्जियाह का पुत्र योताम राजा हुआ। जब वह राज्य करने लगा तब 25 वर्ष का था और यरूशलेम में 16 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम यरूशा था, जो सादोक की बेटी थी। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, अर्थात जैसा उसके पिता उज्जियाह ने किया था ठीक वैसा ही उसने भी किया था। योताम अपने पिता उज्जियाह की नाई एक अच्छा राजा था। उसके बाद उसका पुत्र आहाज राजगद्दी पर बैठता है और वही करता है जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है। मेरे मित्रों, आहाज 16 वर्ष तक राज्य करेगा और वह एक बुरा राजा है। उसके समय में गृह युद्ध होगा। वह समय इसराइल के लिए तनाव का समय था। यदि आप उस समय की दुर्दशा को देखना चाहते हैं तो दूसरे राजाओं की पुस्तक 16 अध्याय उसके 3-4 पद को पढ़ें। लिखा है, परंतु वह इसराइल के राजाओं की सी चाल चला, वरन उन जातियों के घिनौने कामों के अनुसार जिन्हें यहोवा ने इसराइलियों के सामने से देश से निकाल दिया था। उसने अपने बेटे को भी आग में होम बलि कर दिया। वह ऊंचे स्थानों पर और पहाड़ियों पर और सब हरे वृक्षों के नीचे बलि चढ़ाया और धूप जलाया करता था। वह एक बुरा मनुष्य था और सीरिया की सहायता से इसराइल के आक्रमण के कारण भयभीत था। वे यद्यपि आरंभ में तो विजयी नहीं हुए, परंतु आहाज के पास अपने कारण थे कि उसे अंततः विजय की आशा थी। यशाया 7 अध्याय उसके 2 पद में लिखा है, जब दाऊद के घराने को यह समाचार मिला कि अरामियों ने एप्रेमियों से संधि की है, तब उसका और प्रजा का भी मन ऐसा कांप उठा जैसे वन के वृक्ष वायु चलने से कांप जाते हैं। आहाज न तो स्वयं पर और न ही अपने देश पर परमेश्वर की आशीषों की आशा कर सकता था। यही कारण था कि वह पेकह और रेजिन सीरिया के राजा की संयुक्त सेना के आक्रमण से भयभीत था। उसकी प्रजा में भी भय व्याप्त था। मेरे मित्रों, पहले भी इसराइल और सीरिया ने यहूदा को जीतने का प्रयास किया था, परंतु अकेले अकेले वे उस पर प्रबल न हो पाए। अब क्योंकि दोनों देशों की सेनाएं एक साथ थी, आहाज को हारने का भय था, उसे पूरा विश्वास था कि वे यरूशलेम को जीत लेंगे। आहाज के अभक्त होने के उपरांत भी परमेश्वर यहूदा वासियों को बंधुआई में जाने नहीं देना चाहता था। हम इतिहास में देख चुके हैं कि यहूदा उस समय उत्तर राज्यों के दासत्व में नहीं गया था, परंतु कई वर्षों बाद वे बेबीलोन की बंधुआई में गए। मेरे मित्रों, यहां पर हम देखते हैं कि एक राजा जो परमेश्वर से दूर है, अभक्त है और उन कार्यों को कर रहा है जिससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है, फिर भी वह अपने लोगों के लिए उस पर दया करता है। मेरे प्रियों, यह क्या ही महान बात है कि हमारे प्रतिदिन के जीवन के उन पापों के बावजूद भी जिसे हम करते हैं, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। वह चाहता है कि हम अपने मनों को फिराकर उसकी ओर आ जाएं, उस उद्धार के आनंद को प्राप्त करें, उस शांति को प्राप्त करें जिसे वह मुझे और आपको देना चाहता है। आइए आज हम इस अध्ययन के द्वारा अपने जीवन में इस बात को लाने का प्रयत्न करें। यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय आज समाप्त होता है। अगले अध्ययन में हम फिर मिलेंगे। तब तक आप सब अपना ध्यान रखें, प्रभु में बने रहें। प्रभु आप सबको आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
जयकार करते हुए हम आते हैं, जय जयकार करते हुए हम आते हैं, जय जयकार करते हुए हम आते हैं, जय जयकार करते हुए हम आते हैं। उसके हाटकों में आनंद की ध्वनि से ऊंचे सुरों में हम गाते हैं, उसके हाटकों में आनंद की जय जयकार करते हुए हम आते हैं, 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 उसके फाटकों में आनंद की ध्वनि से ऊंचे सुरों में हम गाते हैं, उसके फाटकों उसने हमें चुना है और हम उसके हैं, उसकी ही चराई के हम सब भेड़े हैं, आते हैं उसके भवन में महिमा और आदर है मन में, आते हैं उसके भवन में खुशियाँ है, खुशियाँ है मन में, उसने हमको चुना है और हम उसके ही हैं, उसके ही चराई के हम सब भेड़े हैं, उसके फाटकों में आनंद की ध्वनि से जय जयकार करते हुए हम आते हैं, 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 उसके फाटकों में आनंद की ध्वनि से ऊंचे सुरों में हम गाते हैं, उसके फाटकों में आनंद की जय जयकार।